नेक्स्ट टॉपिक, बुग़्ज़ और हसद से बालातर हो जाइए। क्यों? इसलिए कि सबसे ज़्यादा खुश और शरह सदर के साथ आखिरत का तालिब होता है। लोगों को अल्लाह की जो नेमतें मिली हैं इन पर हसद नहीं करता, बल्कि खैर, नेकी और एहसान जैसी कदरों की नुमाइंदगी करता है। लोगों को फ़ायदा ही पहुंचाना चाहता है, या कम से कम इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। देखिए कि हज़रत इब्ने अब्बास इल्म के समंदर और तर्जुमानुल कुरान कहे जाते हैं। अपने हुस्न अखलाक, सखावत नफ्स और शरई आसानियों के रुझान के बायस बनी उमैया और बनु मिरवान वगैरह जैसे दुश्मनों को दोस्तों में बदल लेते हैं, यानी इन्होंने मुश्किल फतवे नहीं दिए। चुनाचे लोग इनके इल्म फ़हम से फ़ायदा उठाते हैं। मजालिस और मसाजिद इनके फ़िक्र, ज़िक्र, तफसीर और खैर के चर्चों से गूंज उठती हैं। आप जमल और सफ़ीन को फरामोश करके मुस्बत और तामीरी कामों में लग जाते हैं, टूटे को जोड़ते और ज़ख्मों को मंदमिल करते हैं। लिहाजा सब आपसे मोहब्बत करते हैं और सही तौर पर फ़कीहुल उम्मत करार दिए जाते हैं। इसके बरक्स हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जैसा आबिद, ज़ाहिद और बुलंद इंसान तसादम की पॉलिसी अपनाते हैं। नतीजा ये होता है कि इनको रिवायत हदीस का मौका नहीं मिलता और मुसलमानों का सवाद आज़म भी इनसे दूर हो जाता है। फिर हरम का अलमिया पेश आया कि आपको काबा की पनाह लेनी पड़ी और बदबख्त दुश्मनों ने काबा पर पत्थर फेंके और हज़ारों लोग कत्ल हुए। फिर आपको शहीद करके सूली पर लटका दिया गया। अल्लाह का फ़ैसला यही था जो होकर रहा। हम इन हजरात की जलालत कदर को घटाना और इनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर रहे। यानी सहाबा ने जो किया या सहाबा के साथ जो हुआ, हम उस पर एक लफ्ज़ भी तनकीदी लफ्ज़ों में नहीं कहेंगे, लेकिन मुराद क्या है कि ये एक तारीखी मुताला है जिसमें हमारे लिए इबरत का सामान है। रिफ्क, नरमी और दरगुजर और रफ़ जैसी सिफात से इंसानों में कम ही लोग मुत्तसिफ होते हैं, क्योंकि इसके लिए अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ता है। सियादत यानी सरदारी, लीडरशिप वगैरह के हसूल की ख्वाहिश को मारना होता है। तो क्या सीखा आपने? मैंने दिलों से बुग़्ज़ और हसद को निकाल दीजिए, आप लोगों के भी प्यारे बनेंगे और अल्लाह के भी। और इस बात को सूरत माईदा 64 में और माईदा 91 अल-बकरा 109 में अल्लाह ने बयान किया कि मोमिन भाइयों के लिए दिलों में बुग़्ज़ अल्लाह के अज़ाब की एक किस्म है। इसी तरह बुग़्ज़ और अदावत शैतान के हथकंडे हैं और दुनियावी मामलात में भी हो सकता है, दीनी भी, जैसे कि यहूद को अल्लाह के नबी से था। और दुआ बड़ी प्यारी है, हमने दौरे कुरान 2020 में भी सीखी थी जब दिलों में उल्फत डालने की बात थी। और दुआ है सूरत हशर की आयत 10 में, रब्बना अग़फिर लना वली इख्वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ए हमारे रब, हमें और हमारे इन भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लाए हैं, और हमारे दिलों में अहले ईमान के लिए कोई बुग़्ज़ न रख। ए हमारे रब, तू बड़ा मेहरबान और रहीम है। ज़रा सा गैप लीजिए, सोचिए, ये सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं, अगर मैं ना पढ़ती ना सुनती तो मेरा क्या नुकसान होता? और अल्लाह के नबी की बात बहुत सच्ची है कि अल्लाह की मार्फत खुशहाली में हासिल करो, अल्लाह तुम्हें शिद्दत के दिनों में याद रखेगा। जब ज़िंदगी में खुशियाँ हों तब भी अल्लाह को ना भूलिए। मतलब ये कि जब बंदा तकवा इख्तियार करेगा, इसे अल्लाह के हदूदो हकूक़ का पास और लिहाज रहेगा, तो इसके ज़रिए इसके और अल्लाह के माबैन एक ख़ास किस्म का ताल्लुक़ पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से तंग हाली में अल्लाह इसे तनहा नहीं छोड़ेगा बल्कि मुसीबतों से निजात देगा। इस मार्फत ख़ासा का तकाजा है कि बंदा अपने रब से करीब हो, इससे मोहब्बत करे, इसकी पुकार पर दौड़ता चला आए। जब बंदा कमा हक का हो, यानी जैसा कि हक है उसका, उतना सब्र करता है तो आजमाइश इसके हक़ में इनाम बन जाती है। बला अतीय में और नापसंदीदा चीज़ें मरगूब चीज़ों में बदल जाती हैं। अल्लाह की बंदगी, खुशहाली और बदहाली, पसंद और नापसंद हर हाल में होनी चाहिए, जबकि ज़्यादातर लोग बस खुशहाली में इसका हक़ अदा करते हैं। मज़ा तो जब है जब बदहाली, तुर्शी और बेबसी में भी बंदगी का हक़ अदा करे। यहीं पर बंदों के रवैये मुख्तलिफ हो जाते हैं और इसी लिहाज से अल्लाह के यहाँ इनके मरातिब होते हैं। तो मर्तबे पाने के ख्वाहिशमंद लोगों को आजमाइशों में सब्र करना है। खुद से कहिए, सब्र करूँगी, अगर ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी आजमाइश भी आ गई, मैं कभी शिकवा नहीं करूँगी। तो आजमाइशों में सब्र इनको नेमत बना देता है। हाईलाइट कर लें ये जुमला, सब्र नेमत बना देगा आजमाइश को। जिसको आजमाइश के सबब अल्लाह का कुर्ब मिल गया वो आजमाइश नहीं रहती, वो रहमत बन जाती है। और सूरह यूसुफ 38 को अगर सामने रख लें तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल की तारीकियों में थे और कहा क्या जा रहा है, अल्लाह का फजल है हम पर और तमाम इंसानों पर, किसने अपने सिवा किसी का बंदा नहीं बनाया, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और सूरत कसस 22 को देख ले तो मूसा मिस्र से मदियन के बंजर रास्ते पे चले और कहते कि उम्मीद है कि मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पर डाल देगा। तो क्या सीख रहे हैं मैं और आप इन चीज़ों में? पहली बात, सुबह की रोशनी दलील है कि गमों की रात के अंधेरे छटेंगे। फिर हमने सीखा कि दिल को बुग़्ज़ और हसद से पाक करना है, आजमाइशों पर सब्र से इनको अपने लिए नेमत बना लेना, और दीन में ख़ुद को गंदा मंदा रखना और बहुत ही अजीब सी कैफियत देना ये मतलूब नहीं बल्कि जमाल इख्तियार करना है। अल्लाह हमें इस्लाम का खूबसूरत नमूना बना दे। अगली टिप लीजिए, इल्म आसानी की कुलीद है, बहुत ही बड़ी बात है। यानी आप जितना इल्म हासिल करते जाएंगे ना, आपको अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ दिखेंगी। चाबी है आसानियों को लाने वाली चीज़, क्योंकि जो लोग बेचारे इल्म नहीं ले पाते अगर, तो वो हर वक्त गिल्ट में ही रहते हैं, ये भी हराम, ये भी गलत, इस पे भी गुनाह, मैंने तो जन्नत में जाना ही नहीं, चलो फिर मैं कुछ और गुनाह करूँ। इसके बरक्स इल्म के बाद आपको पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें जायज़ हैं, लेकिन लोगों ने शिद्दत की बुनियाद पर उसको नाजायज़ करार दिया होता है। इल्म और आसानी दोनों का गहरा साथ है। चोली कहते हैं कमीज़ को, यानी जिस्म के साथ जैसे कपड़ा लगा होता है ना, इस तरह इल्म के साथ आसानी लगी हुई है। शरीयत में मुतज़र उलमाए रासखीन को देखिए, मतलब बड़े बड़े उलमा जो गुजरे, उनकी ज़िंदगी सहल और सादा थी, इनसे मामला करना बहुत आसान था क्योंकि उन्होंने मकसद को जान लिया और मतलूब तक पहुंच गए। इसके बरक्स वो सूफ़ी और जाहिद लोग जो इल्म से महरूम थे, देखिए हर एक नहीं, वो जो इल्म से महरूम थे, इनका तरीका सबसे ज़्यादा मुश्किल है, इनसे मामला बहुत दुश्वार होता है। उन्होंने कुछ जुमले सुन लिए, इन्हें समझ ना सके, कुछ मसाइल तक इनका इल्म महदूद था। ख्वारिज की मुसीबत यही थी कि इल्म ना था ना समझ थी, क्योंकि हकायक जानते ना थे, मकासिद मालूम ना थे, लिहाजा छिलके से चिमट गए। और वो चीज़ जो अंदर मतलूब थी, मतालब अलई, यानी जैसे बादाम के छिलके ले लिए लेकिन अंदर जो गुठली थी खाने वाली चीज़ उसको ज़ाया कर बैठे और उम्मत के हक में एक फितना बन गए। तो मतलब क्या है इस टिप से, कि जो लोग ज़ाहरी इल्म लेते हैं ना ऊपर ऊपर का, वो दीन को मुश्किल कर देते हैं। जिसके पास सही इल्म कुरान सुन्नत और रियल नॉलेज है, बग़ैर किसी तासुब और किसी नज़रियाती इख्तलाफ के या मुवाफ़कत के, तो वो दीन हमेशा आसानियों वाला होता है। कैसे, सवाल लिखे, इल्म के साथ आसानी कैसे है? तो पहली बात है कि मकसद हयात की पहचान हो जाती है, अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया, अल्लाह मुझसे क्या चाहते हैं। उम्दा अखलाक और किरदार साजी होती है इल्म के साथ, ज़िंदगी में आसानियाँ और बरकतें आने लगती हैं, तरजीहात का बेहतर तायुन होता है, हुनर में इजाफा होता है और वुसअत नज़री पैदा हो जाती है। फिर आप देखिए कि तीन किस्म के लोगों का तकाबुल देखा, एक होता है आलिम बामल रासिख व रासिखी नफिल इल्म, सूरत आल इमरान के बिल्कुल दूसरे ही रुकू में है, बहुत रसूख पाने वाले, इनकी ज़िंदगी आसान और सादा होती है, दूसरे भी उनको फॉलो करते हैं, उनके लिए एक किस्म की शम्मा होते हैं, मिशले राह होते हैं। कुछ लोग जाहिद और सूफ़ी कहलाते हैं, अमूमन ऐसे लोग, सारे नहीं, याद रखिए, ना सूफ़ी लफ्ज़ बुरा है ना जाहिद बुरा है, दोनों बहुत प्यारे लफ्ज़ हैं, लेकिन कुछ लोग इन खूबसूरत नामों को बिगाड़ देते हैं क्योंकि कम इल्मी की वजह से दीन को मुश्किल बना लेते हैं और दीन इतना मुश्किल बनाकर पेश करते हैं कि आम लोग तो उसको मान ही ना सकें, उनके लिए काबिल अमल ही ना रहे। इसी तरह दुनियावी उलूम लेने वाले, मतलब दुनियावी इल्म लेने देने वाले लोग तो दुनिया की ज़िंदगी पुरासाइश बनाते हैं लेकिन आखरत के इंजाम और इल्म से लापरवाह होते हैं। तो बेहतर क्या है, दीन और दुनिया दोनों का इल्म बैलेंस्ड करके लिया जाए और अल्लाह ताला आपको मुझे इसी की तौफीक दे। अगली टिप है जी, यूँ नहीं यूँ, यानी तरीका सिखाया जा रहा है, कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसको जाकर बस ये कहिए कि ऐसे नहीं करते। अच्छा, इतना तो बहुत लोग बता देते हैं पर ये नहीं बताते फिर कैसे करते हैं। तो यूँ नहीं यूँ, क्या बताया कि गलत तरीके से कोई काम किया जा रहा है तो फिर आप उस पर तनकीद कीजिए, लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी बताइए कि सही तरीके से काम कैसे किया जाता है। तनकीद برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، یہ مراد ہے اس سے. آپ کو حق ہے تنقید کرنے کا، لیکن پھر آپ اس کی اصلاح کر کے اس کو بہترین طریقے سے بھی پیش کیجئے تاکہ دوسرے بھی اس چیز کو اچھی طرح کر سکے. یہ لکھتے ہیں کہ میں نے دو مشہور کتابوں کا مطالعہ کیا، لیکن دونوں میں شریعت کے عطا کردہ یسر اور سعادت کے برعکس باتیں پائی جاتی ہیں. یعنی کتابیں بڑی مشہور ہیں، لیکن شریعت کا جو اصول ہے نا کہ آسانی دو اور خوشبختی کا یہ معیار ہے، وہ اس میں ذرا سا موضوع بدل گیا. امام غزالی کی کتاب ہے احیاء علوم الدین، اس میں لکھتے ہیں کہ نفس کو بھوکا مارنے، پھٹے حال رہنے اور آل فول بولنے کی بولنا چاہیے، یعنی اس کی دعوت دی جاتی ہے. اس میں وہ سارے اغلال اور بیڑیاں، اغلال کیا ہوتے ہیں؟ جو گلے میں پہنی جاتی ہیں چیزیں، زنجیریاں، اور بیڑیاں پاؤں کی بیڑیاں، یعنی مراد ہے بوجھ، جنہیں ہلکا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، انہوں نے اناپ شناپ یعنی ادھر ادھر کی روایات جمع کر دی ہیں جن کا بیشتر حصہ ضعیف یا موضوع ہیں. انہی پر انہوں نے اصول کھڑے کر لیے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تک پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے. احیاء علوم الدین اور بخاری و مسلم کے مابین موازنہ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک سراپائے مشقت و تنگی اور تکلیف کی چیز ہے، یعنی اصل میں اس کتاب کا موضوع تزکیہ نفس ہے، تو بعض دفعہ تزکیہ نفس کے نام پر لوگوں کو بڑی مختلف مشقیں کرائی جاتی ہیں اور ان کو بالکل ایک کہہ لیجئے کہ تارک دنیا انسان بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں آپ حدیث پڑھیں، اتنی سمپل، اتنی آسان. اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث پڑھنے کی بھی توفیق دے. پھر اسی طرح سے ایک سراپا مشقت تنگی اور تکلف کی چیز ہے، دوسری سراپا رواداری اور آسانی ہے. یہیں سے اللہ تعالیٰ کا وہ قول وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى کے معنی سمجھ آتے ہیں. اور دوسرے ابو طالب مکی کی قوت القلوب ہے، یہ بھی ایک رائٹر ہے اور ان کی بک ہے قوت القلوب. انہوں نے اس پر بہت زور دیا کہ دنیا ترک کر دی جائے، گوشہ نشینی اختیار کی جائے، طلب و سعی چھوڑ کر تعطل کا راستہ اپنائیں، تجیبات کا استعمال نہ ہو، شدت تنگی اور مشقت کی راہیں اپنائی جائیں. بلا شبہ دونوں مؤلفین ابو حامد الغزالی اور ابو طالب المکی مخلص تھے، خیر چاہتے تھے، لیکن کتاب و سنت کا علم دونوں کے پاس کم تھا. بس یہی غلطی کی بنیاد تھی. راہ نما ایسا ہونا چاہیے جو ماہر ہو، راستے سے اچھی طرح واقف ہو، جیسے کہ فرمایا لیکن ربانی بنو ولا کن کون ربانی جین. کون سے ربانی بنو؟ کتاب کا جو علم تمہیں دیا اور جو تم پڑھتے ہو اس پر عمل پیرا کرو. معذرت کے ساتھ آج کے دور کے بھی کچھ مبلغین کچھ ایسا ہی دین پیش کرتے ہیں کہ جس میں باطل اور ضعیف روایتیں ہیں، صرف اس نام پہ کہ چلو لوگ سن کے یہ تو کریں گے، نمازی تو بن جائیں گے، حرام تو چھوڑ دیں گے، تو وہ کچھ ایسی روایات پیش کرتے ہیں جن پہ تنقید ہے. تو ہمیشہ سیدھی بات کیجئے، یہ قرآن پڑھنا پڑھانا سب سے بیسٹ ہے، نہ کسی کی سوچ نہ کسی کے افکار، یہ قرآن یہ حدیث. آپ پیچھے ہو جائیں، بس آپ ڈاکیے کی طرح خط دے اور نکل جائیں. اللہ نے انسانی فطرت میں بڑی سمجھ بوجھ رکھی ہے، وہ حق کو پہچان لیتا ہے. اور جیسے کہ حبشہ کے لوگ پہچان کر روئے تھے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ، کیوں روئے تھے؟ کیونکہ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، حق کو پہچان گئے تھے. تو پھر کیا سیکھا آپ نے؟ میں نے یوں نہیں تو یوں. تو دو بڑے اماموں کی بات ہے، امام بخاری اور امام غزالی، اور دونوں بڑی اعلیٰ پائے کی شخصیات تھی. فرق دونوں میں صرف اتنا ہے کہ دونوں نے اپنے اپنے دور کے فتنوں کا علمی مقابلہ کیا. امام بخاری احادیث کے خزانے کو محفوظ کرتے تھے، جبکہ امام غزالی جس دور میں بھیجے گئے تو وہاں فلسفے اور عقل کو پوچھنے کا دور تھا، لوگ بڑے عقل پرست ہو گئے تھے، تو آپ نے فلسفے کو بنیاد بنایا. تو امام بخاری حدیث کے امام تھے، امام غزالی کہہ لیجئے کہ فلسفے کے امام تھے. امام محمد بن اسماعیل بخاری بخارا میں پیدا ہوئے، ان کے والد بھی ایک محدث تھے، امام مالک کے یہ شاگرد تھے، مگر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانچ پڑتال کی، پھر ان کو جمع کیا، ان کو ترتیب دی، ایسی خوبصورت کوششیں کی کہ آنے والی نسلیں تک آپ کو یاد رکھیں گی. اور اس کے برعکس امام غزالی کو دیکھیں، ان کا نام تھا ابو حامد غزالی، اسلام کے مشہور مفکر اور متکلم تھے. متکلم ایک شبہ ہے علم الکلام کا جو اس وقت ضروری نہیں آپ کو بتایا جائے. نام ان کا محمد اور ابو حامد کو نیت تھی، ज़्यादातर फ़लसफ़े के मुताले में मसरूफ़ रहे, जिसकी वजह से फिर मजहबी अकायद से ज़रा सा हट गए। यानी कह लीजिए कि 19वीं का फ़र्क भी आ जाए तो इस मामले में वो बहुत बड़ा होता है। जब उलूमे ज़ाहरी से इनकी तशफ़ी ना हुई तो तसव्वुफ़ की तरफ माइल हुए, और फिर अल्लाह ताला, रसूल, हशर नशर और तमाम बातों के कायल हो गए। तो बहरहाल इन असलाफ़ को पढ़ना चाहिए, ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ ना कुछ कमी बेशी भी रह जाती है। आपको मुझे इतना इल्म ज़रूर होना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ पढ़े तो उसमें सही चीज़ को ले और बातिल को छोड़ दे। और सिलसिला सहीहा की रिवायत 337, आपने फरमाया, आज यानी तुम ऐसे ज़माने में हो कि जिसमें फुकहा ज़्यादा और खुतबा कम है, यानी खुतबा देने वाले या ख़तीब दर्स देने वाले थोड़े थे उस दौर में, लेकिन समझते बहुत थे दीन को, और सवाल करने वाले कम और देने वाले ज़्यादा हैं। इस ज़माने में इल्म से बेहतर अमल है, लेकिन आन करीब ऐसा ज़माना भी आएगा कि इसमें फुकहा कम और खुतबा ज़्यादा होंगे, सवाल करने वाले ज़्यादा और देने वाले कम होंगे। इस ज़माने में अमल से बेहतर इल्म होगा। अल्लाह अकबर, यानी लगता है कि आज का दौर है। इसीलिए शायर ने कहा, फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। यानी फ़िलासफ़र्स का मसला बहुत जगह अल्लाह का वजूद है। तो बहरहाल ये एक अपनी जगह मौजू है, इसको अगर आप छोड़ भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीख ये लीजिए कि हमने कुरान सुन्नत से जुड़ के रहना है। अगला टॉपिक है, सबसे ज़्यादा शरह सदर वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और होते क्यों ना। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अनक विज़रक जैसी खूबसूरत सूरत आपकी दिल की कैफियत को बयान कर रही है। तो मुअल्लिमे खैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा नुमाया सिफत ये थी कि आपको इनशराख सदर था, यानी आपका सीना खुला था, आपको पता था क्या करना है, कितना करना है। यानी ही वॉज सो मच क्लियर अबाउट हिज थाट्स और इसी तरह से अबाउट हिज एक्शंस। रज़ा और सादत की दौलत मिली थी या बशारत देते, मुशक्क़त और नफ़रत अंगेज़ी से रुकते थे, मायूसी और कनूतियत पास भी न फटकती थी, चेहरे पर हमेशा मुस्कराहट सजी रहती, दिल में रजामंदी होती। आपकी लाई हुई शरीयत में आसानी है, सुन्नत में तवाज़ुन है। वसतियत क्या होता है? मिडल में रहना, वसत में रहना। मिल्लत में खुश नसीबी है, और क्यों ना आपका तो मिशन ही लोगों से तंगी और तकल्लुफ़ का बोझ उतार फेंकना था। तो आपको मुझे भी अपने लिए यही दुआ करनी है कि रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दता मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। सवाल पैदा होता है, शरह सदर हो जाए तो क्या बरकत नसीब होती हैं? तो पहली बात, रज़ाए कल्बी और इत्मीनान नसीब होता है, दिल बड़ा मुतमईन रहता है, अल्लाह के हर फैसले पे आप खुश रहते हैं, फिर आप मुस्कुराहटें बांटते हैं, आप सआदत की ज़िंदगी गुजारते हैं, आप दर्दमंद होते हैं, आप दूसरों की मुश्किलात को दूर करना चाहते हैं, आप दूसरों के लिए फ़ायदे के बनते हैं, और फिर सुन्नत में इतदाल है, इसको आप मान जाते हैं। और अल्लाह के नबी की बड़ी खूबसूरत रिवायत है, वो दाऊद 4773, हज़रत अनस रावी हैं, कहते हैं कि लोगों में सबसे बेहतर अखलाक वाले अल्लाह के नबी थे। एक दिन आपने मुझे किसी ज़रूरत से भेजा तो मैंने कहा, अल्लाह की कसम मैं नहीं जाऊँगा, हालांकि मेरे दिल में ये बात थी कि अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया इसलिए ज़रूर जाऊँगा। खैर, मैं निकला, यहाँ तक कि जब मैं कुछ बच्चों के पास से गुजर रहा था तो बाजार में खेल रहे थे, अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पीछे से मेरी गर्दन पकड़ ली। मैंने आपकी तरफ मुड़कर देखा, आप हंस रहे थे, हम होते तो पकड़ के गुस्से में देते, मैंने तुम्हें किधर भेजा, तुम क्या कर रहे हो। नहीं, आपने मुस्कुराहट के साथ उनको देखा, फिर फरमाया, ए नन्ने अनस, जाओ जहाँ मैंने तुम्हें हुक्म दिया। मैंने अर्ज़ किया, ठीक है, मैं जा रहा हूँ अल्लाह के रसूल। अनस कहते हैं, अल्लाह की कसम, मैंने 7 साल या 9 साल तक आपकी खिदमत की है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आपने कभी मेरे किसी ऐसे काम पर जो मैंने किया हो ये कहा हो कि तुमने ऐसा और ऐसा क्यों किया, और ना ही किसी ऐसे काम पर जिसे मैंने ना किया हो या कहा हो कि तुमने ऐसा और ऐसा क्यों नहीं किया। अबू दाऊद की रिवायत है 4773। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें भी इतना तहम्मुल वाला बना दे। नेक्स्ट टॉपिक है, तदरीज बरते। तदरीज क्या होती? ग्रेजुअलिटी, स्टेप बाय स्टेप, एकदम धाड़ सानी कोई काम ना करें। गाड़ी देखिए 100 पे चल रही हो ना, तो मोड़ना हो तो पहले उसको आप 90, 80, 70, 60, 40 पे लाते हैं, फिर मोड़ते हैं, वरना तो गाड़ी उलट जाएगी। तो बस यही है तदरीज। کوئی بھی تبدیلی لائیں تو بڑے غیر محسوس طریقے سے لائیے۔ مخاطبین کو عقل و شعور سے نوازنے کے لیے مناسب ہے کہ مسائل میں تدریج برتی جائے اور اہمیت کے حساب سے درجہ بدرجہ چیزیں لائی جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اسی کی تعلیم فرمائی تھی، جب یمن روانہ کرتے وقت ان کو یہ وصیت کی کہ سب سے پہلے تم انہیں توحید کی دعوت دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف بلانا۔ اسی طرح معلوم ہوا کہ مسئلے میں پہلا، دوسرا اور تیسرا وغیرہ درجات ہیں، تو پھر ہم مسائل میں گڈ مٹ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی جو چیز پہلے سیکھنی تھی اس کو پہلے سیکھیے، جو دوسری پھر دوسری۔ ان کو یکبارگی کیوں پیش کر دیتے ہیں؟ کافروں نے کہا، سورہ فرقان کی آیت 32 ہے، اس پر قرآن پورا بیک وقت نازل کیوں نہ ہو جاتا؟ اس لیے کہ ہم آپ کے دل کو تھما دیں اور تاکہ آپ کے دل کو حوصلہ دیں۔ ہم نے اس کو بہترین طریقے پر پڑھا، یعنی کہتے تھے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آ رہا ہے قرآن، اکٹھا ایک ہی دن کیوں نہ آ جائے؟ تو اس کا جواب سورہ فرقان نے دیا گیا، مسلمانوں کی سعادت ہوگی اگر وہ اپنے اسلام اور اس کی تعلیمات پر اوامر و نواہی میں اس کے یسر اور سہولت کے پہلو پر خوشی محسوس کریں، کیونکہ وہ اصلاً قلبی اضطراب، ذہنی انتشار اور اجتماعی بے راہ روی سے نجات دلانے کے لیے آیا ہے۔ مکلف بنانا ایک مشقت ہے، یعنی تکلف نہیں برتنا چاہیے کچھ چیزوں میں۔ دین مشقت کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، اس لیے شرع میں مکلف بنانے کا حکم منفی طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ مکلف نہیں بناتا کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے بقدر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی فرمائش کرتے تو آپ انہیں کوئی جامع اور مختصر بات بتا دیتے جو شہری اور دیہاتی سب کو یاد ہو جائے، یعنی بہت مشکل لفظ نہیں استعمال کرتے تھے۔ آپ کی قیمتی وصیتیں اور نصیحتیں، اس میں واقفیت، حالات کی رعایت اور آسانی کے پہلو غالب ہوتے، یعنی بڑی عام فہم سی بات کرتے تھے آپ۔ یہ غلط ہوگا کہ ہم سننے والوں کو ایک ہی وقت میں جو کچھ بھی ہمیں معلوم ہے بتا دے، ساری نصیحتیں، ساری تعلیمات، سارے سنن اور سارے آداب انڈیل دیں۔ بعض وقت ہم بھی اتنی بے صبری کرتے ہیں، خاص طور پہ بچوں کے لیے، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، یہ بھی کرو، ایک ایک کر کے سکھائیے۔ روز کا ایک بھی سیکھیں گے تو 30 دن میں 30 سیکھ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس لیے اتارا کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنا دیں۔ تو تدریج خوبصورت ہے۔ شاعر کہتے ہیں، سعد شملہ اوڑھے، انہیں پنگھٹ پر پانی پینے کے لیے لایا، لیکن اے سعد، اونٹ اس طرح پنگھٹ پر نہیں لائے جاتے۔ اللہ اکبر، بہت ہی پیارا سا شعر ہے کہ کیسے جانوروں کو بھی پانی پلانے کے طریقے آنے چاہیے۔ تو جانور کو پانی پلانے کا طریقہ ہو تو انسانوں کی تربیت میں تدریج نہ ہو تو یہ نہ سمجھی ہے۔ آپ اس کی چند مثالیں دیکھیے۔ بیج سے درخت کیسے بنتا ہے؟ پہلے بیج سے کومپل اگتی ہے، کومپل سے تنہ نکلتا ہے، تنے سے شاخیں، شاخوں پر پتے، پھر پھل اور پھول، ایسے ہی ہے نا، روٹ ٹو فروٹ کہہ لیں۔ قطرے سے دریا کیسے بنتا ہے؟ پانی کا بخارات بن کر اوپر جانا، پھر بارش کا برسنا، پھر دوبارہ نیچے آنے کا مکمل عمل، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے، آپ آج شاگرد ہیں، کل آپ انشاءاللہ استاد بنیں گے، تو استاد سے شاگرد بننے کا راستہ تدریج کا راستہ ہے۔ اوور نائٹ استاد پیدا نہیں ہوتے، سالوں کی محنت اور کوشش سے شاگرد استاد کے درجے پر آتا ہے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، انتظار کرنا پڑے گا۔ کائنات سے تدریج سیکھیے تاکہ آپ کے اندر بھی تدریج آئے۔ اور دو دفعہ آیت آئی ہے، سورہ فرقان 32 ہے، دیکھ لیجئے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَنُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ جُمْلَةً وَاحِدًا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ قرآن ترتیل سے اترا۔ جب اللہ کے نبی نصیحت کرتے تو اس کے خاص کچھ خواص تھے، یعنی کچھ کریکٹرسٹکس ہوتی تھی۔ پہلی بات ہے، مختصر مگر جامع ہوتی نصیحت۔ پھر نصائح میں واقفیت ہوتی، یعنی ایسے مسئلے نہیں چھیڑتے تھے جن سے لوگ واقف ہی نہیں۔ حالات کی رعایت کرتے، کن کے سے بات کر رہا ہوں، کون ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے منتظر، اور آسانی کا پہلو اس پر غالب ہوتا تھا۔ پھر اسی طرح سے قلیل پر شکر نہیں کرتے تو کثیر پر کیسے کرو گے؟ جو آدمی ٹھنڈے میٹھے صاف جاری پانی پر اللہ کی ہم نہ کرتا ہو، وہ زبردست محلوں، شاندار گاڑیوں اور گھنے باغات پر بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ इसी तरह जो गरम रोटी पर इसका शुक्रगुजार ना होगा, वह लजीज़ खानों और अच्छे दस्तरखानों पर इसका शुक्रगुजार कैसे होगा, क्योंकि मुनकर और नाशुक्रे के लिए कलीलो कसीर सब बराबर हैं। इनमें बहुत सारे तो ऐसे होंगे जिन्होंने अल्लाह से मज़बूत अहदो पैमान किए होंगे कि अगर इनको अल्लाह का इनाम, फ़जल और नेमत मिल जाए तो वो शुक्रगुजार होंगे। सूरत तौबा में आता है किरदार उसकी तरफ इशारा, इन्फाक और सदका फिर करेंगे, तो फरमाया इनमें वो भी हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया, अगर वो हमें अपने फजल से नवाजे तो हम ज़रूर सदका करेंगे और ज़रूर सालेहीन में से हो जाएंगे, बस जब इसने अपना फजल इन्हें दे दिया तो उन्होंने बुखल करके पीठ फेर ली और एराज कर लिया। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना करे। किसी को अगर 1 लाख डॉलर मिल जाए तो क्या करेगा? बड़े लोगों से ये सवाल किया, कहते आधा दे देंगे, कोई कहता है पूरा अल्लाह के रास्ते में दे देंगे, कोई कहता है थोड़ा सा रख के दे देंगे। मैं कहती हूँ आज जाकर अपनी स्टेटमेंट चेक कीजिए, कितना है बैंक में, उतने का पहले आधा दीजिए, उतना पूरा दीजिए, उतने में से थोड़ा सा रख कर दे दीजिए। तो इस पे फिर लोग इधर उधर देखने लगते हैं। इस मौजू में ये बात छुपी हुई है, थोड़ा दे नहीं पा रहे तो ज़्यादा कहाँ देंगे, छोटी चीज़ संभल नहीं रही तो बड़ी कहाँ से मिलेगी। तो ख़ुद से पूछिए कि क्या हमने छोटी सी चीज़ का हक अदा कर दी है जो हम बड़ी चीज़ की ख्वाहिश रखें, फिर बड़ी की ख्वाहिश भी ख़त्म हो जाती है। ये भी एक फितरत का असूल है। हम इस किस्म के कितने ही लोगों को रोज़ देखते हैं जो मुस्तरेब, अफसरदा दिल, मुर्दा ज़मीर और रब्बे ताला से ही शाकी होते हैं कि इन्हें बहुत सारा रिस्क नहीं दिया, हालांकि वो सेहत तो आफ़ियत से हैं, बकदरे किफाफ यानी किफ़ायत के काबिल इन्हें रिस्क मिल रहा है। बास फारिगुल बाल हैं, वसत में हैं, लेकिन शुक्रगुजार नहीं, यानी जो नेमतें पास होती हैं उसको लोग नहीं देखते। तब अगर ऐसे नाशुक्रे को ख़जाने, कोठियाँ और महल्लात भी दे दिए जाएं, तो अपने रब से भागने और अपने आका व मौला की नाफरमानी करने में सबसे आगे होगा। अल्लाह ना करे ऐसे हों हम। वतन का शौक दामनगीर है, वो घर हमारी नज़रों के सामने है, तो इस वक्त क्या हाल होगा जब महीने भर के लिए साथियों के साथ सफ़र करेंगे, यानी जिनको घर रहने का शौक़ बड़ा है वो कहाँ निकलेंगे महीनों के लिए दीन के लिए, ये मुराद है। हमारा हाल यह कि जब किसी के पास जूता ना हो तो कहेगा ए रब तू मुझे जूते दे दे तो मैं शुक्रगुजार बन जाऊंगा। जूते मिल जाएं तो शुक्र को मौखर करते हैं यानी पोस्टपोन करके क्या कहते हैं, अल्लाह गाड़ी दे दे फिर शुक्र करूंगा। हम नेमत नकद मांगते हैं और शुक्र को उधार कर देते हैं। इतने खूबसूरत जुमले हैं, अल्लाह अकबर। अपनी ख्वाहिशात अल्लाह से फौरी पूरी कराना चाहते हैं और उसके अहकाम पर टालम मटोल करते हैं। अल्लाह हमारी इसलाह फरमा दे। बहुत ही नाशुक्रा इंसान, तो क्या पता चला, थोड़े पे शुक्र कीजिए, अल्लाह ज़्यादा भी देगा, और आज जो थोड़े पे राज़ी नहीं कल ज़्यादा पे भी राज़ी नहीं होगा। आप देखिए कि कसीर पर शुक्र मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद इंसान में तकब्बुर और रियाकारी आ जाती है और नेमतों को इंसान अपनी सलाहियत और अपनी ज़हानत का समरा समझता है। कलील पर शुक्र करना आसान है, क्योंकि तंगी तुर्शी में सिर्फ़ अल्लाह का आसरा होता है और शुक्र पर मज़ीद देने का वादा भी अल्लाह फरमाता है। इसी तरह आप देखिए कि अब्दुलरहमान बिन औफ़ कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकलीफ़ और तंगी में आजमाए गए, तो इस पर हमने सब्र किया। हम आपके बाद की हालत में कुशादगी और ख़ुशी में आजमाए गए तो हम सब्र ना कर सके। ये तिरमिज़ी की रिवायत है 2464, और अमूमन आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा ऐसा ही होता है, लोग कुछ इसी किस्म की बातें करते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें इसी पे बरकत दे और इसके ऊपर अपने आप को जमाने वाला बना दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।